भ्यः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिच्छते। समीक्षा में मैंने विद्वत जनों की प्रवचनों की क्या समीक्षा करूं, ऐसा लगा मुझे तो कि सचमुच में पहला जो प्रवचन हुआ चेतन भाई जी का कि उसको सुनते ही जिसको कभी भेद ज्ञान ना हुआ हो तो भेद ज्ञान हो ही जाए, ऐसा उनका निरूपण सरल सहज शब्दों के द्वारा, जैसे गुरुदेव श्री कठिन से विषय को कठिन से कठिन विषय को भी सरल शब्दों में व्यक्त करके करते थे, ऐसी उनकी शैली वास्तव में बहुत मधुर और सबको ग्रह है और सरलता समझ में आ जाती है। आज आपने प्रथम प्रवचन में आचार्य कुंदकुंद देव ने स्वयं 8 दिन तक सीमंदर परमात्मा की मुखारविंद से विदेश जाकर और उनकी देवध्वनि का लाभ लिया, और जो मूल कहने की जिन मार्ग है मुक्ति का मार्ग है उसको यहाँ आकर के आपने समय सार आदि प्रवचन सार आदि महान ग्रंथों में गूंथ दिया। आज वो अपने लिए एक बहुत बड़ी वसीयत, वो वसीयत नामा मैं तो ऐसे कहता हूँ मेरे लिए ही लिखा है, ऐसा प्रत्येक भक्त जीव को लगेगा तो वो अपने वसीयत नामे की जो वसीयत है उसको नियम से प्राप्त कर ही लेगा। जब तक हमको उसमें अपना वैभव लिखा है ये दिखाई नहीं देता तब तक उसको उसकी महिमा भी नहीं आती। उपयोग में उपयोग है क्रोधात में उपयोग नहीं, तेरे उपयोग रूप ज्ञान में उपयोगवान आत्मा को कभी भी छोड़ा नहीं है। मैंने अनादि से अनंत काल तक जो जिस वस्तु का लक्षण होता है वो लक्ष्य से कभी निकल भाग सकता नहीं। अज्ञान दशा में भले उसको अपना लक्षण ज्ञान उपयोग अपने आत्मा का भाषित नहीं हो रहा और इंद्रिय ज्ञान के घटाटोप में वो जो कुछ इंद्रियों से दिखाई देता है और उनमें संयोग में और मूल रूप से शरीर में आसमान जाति द्रौपर्याय में अनुकूल प्रतिकूल विषयों में ही एकत्र किए बैठा रहता है और इनके निमित्त से जो लक्ष्य जो क्रोध आदि भाव होते हैं और उनको अपना स्वरूप मान बैठा, तो इन संवर अधिकार में जो महत्वपूर्ण बात है कि दोनों में तुम 36 का आंकड़ा देखो, जमीन आसमान का अंतर देखो, अंधेरे और उजाले का अंतर देखो, आश्रव जो क्रोधादि भाव रागादि वो अंधकार में है और ज्ञान उपयोग स्वरूप आत्मा सदाकाल जल ज्योति स्वरूप स्वपद प्रकाशक स्वच्छ शक्ति से विद्यमान सब सब पदार्थ अनादि अनादि अनंत है, वो अंश में से अंशी अंश में अंशी रह रहा है। उपयोग जो अंश व्यक्त है ये व्यक्त अंश अपने अंशी भगवान आत्मा को स्पष्ट रूप से बता रहा है और इसी कारण से आचार्य ने ये बात से देखी व्यक्त से अव्यक्त को प्रेस करना है। जगत में जितने पदार्थ हैं उसमें अपन मूल रूप में जीव और पुद्गल को पकड़े, क्योंकि बाकी अरूपी अभी अपने कोई ज्ञान के विषय बनते नहीं। अरूपी द्रव्यों के प्रदेशों की प्रत्यक्षता परमात्मा तो केवल ज्ञान का विषय होता है कि यहाँ पर अभी आकाश के प्रदेश जुड़े हैं, धर्मास्तिकाय के जुड़े हैं, अधर्मास्तिकाय के जुड़े हैं, कालानुवी के देवी अरूपी वे जुड़े जुड़े हैं और ऐसी अनंत जीव राशि जो स्वरूप से अरूपी है वे भी कहने चाहिए से अपने अपने जुड़े जुड़े स्वरूप अस्तित्व में बट रहे। फिर आरोपी द्रव्यों के प्रदेशों की प्रत्यक्षता तो केवल ज्ञान का विषय है, लेकिन ये कमाल की बात है कि भगवंत ने कही कि तुम्हारे पास जो ज्ञान करण है उस करण के द्वारा तुम अपने चैतन्य सूर्य को निरभ परख सकते हो, क्योंकि उसके बिना ये ज्ञान उपयोग प्रकट हो सकता नहीं और इसलिए उस उपयोग लक्षण धारा से तुम अपने परिपूर्ण ज्ञान स्वामी कार्य परमात्मा आत्मा को जो कि अभी वर्तमान पर्याय में नहीं है व्यक्त उसको तुम पकड़ सकते हो। और जो जहाँ पर उसको सकल निरावरण भी कहा था, सकल निरावरण का है 320 गाथादि में अनेक जगह, तो उसका वास्तव में कर्णालयुक्त से भी विचार किया जाए मैं जरा बात अलग से कह रहा हूँ, करुणा योग से अपेक्षा मतलब जगत में ऐसा कोई कारण वर्णा में कोई ऐसा कर्म परमाणु नहीं है कि जो हमारे शुद्ध जीवत्व शक्ति को, मेरी सत्ता को आवृत कर सके, आवरण कर सके या उसका घात कर सके। सदाकाल प्रकट तत्व है ऐसा चिन्मय ज्योति स्वरूप वस्तु, तो उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप सभी भी बोलेंगे किसको याद है वो देखते हैं। सकल में सकल निरावरण अखंड एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनाश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण निज। हाँ निज शब्द महत्वपूर्ण है, निज परमात्मा द्रव्य हूँ। तो ये व्यक्त है कि अव्यक्त है? सकल निरावरण का है ना, जिसको कोई आवरण नहीं, ऐसा कोई कर्मी नहीं है जो उसको आवरण करके माने उसका नाश कर सके। तो ये अपने स्वरूप अस्तित्व को ये अपने उपयोग लक्षण से इसको पकड़ना है। अब ये तो अव्यक्त की बात हुई, ये व्यक्त जो लक्षण है ये कब से है? अनादि से है। तो इस बात की आपने बहुत अच्छे सचोट शब्दों में सिद्धि की। अच्छा, उपयोग में क्रोधादि रागादि है क्या? नहीं है। तो रागादि में क्रोधादि में उपयोग है क्या? तो जिस क्षण अपने ज्ञान में सचमुच में ये जो आश्रमवादी भाव जितने हैं पहले हैं उनका अस्तित्व है, सात तत्वों का उनका अस्तित्व है कि नहीं, तो ये रागादि को, जैसे कल कोई पूछ रहा था और गुरुदेव के प्रचन में आया था कि पंचाक्षी का है तो पुण्य पाप को भी क्या कहा है, जीव का लक्षण थे कि ये जो पुण्य पाप है जड़ पदार्थों में नहीं पाए जाते, किसमें पाए जाते हैं? जीव की अशुद्ध दशा में संसार अवस्था में अशुद्ध उपादान की अपेक्षा से भी देखे जाते पाए जाते हैं। और आगम कहता है कि अशुद्ध निश्चय से अथवा शुद्ध नय से अशुद्ध पर्यायिक निश्चय से वे जीव की है, और नय में तो ही लगता है। और उसमें यहाँ तक कहा जाएगा कि ये रागा भी जितने विकारी परिणाम है ये आत्मा से अनित तादात्म सिद्ध संबंध वाले, और उन्हीं को जब अध्यात्म में आते हैं जो आपने बताया था 69-70 आदि जो समय काल की गाथाएं हैं उसमें आप सबने देखा होगा ज्ञान का आत्मा से नित्य तादात्म सिद्ध संबंध बतलाया है। कैसा है ज्ञान का उपयोग का संबंध? नित्य तादात्म मैंने उसके बिना आत्मा की सत्ता ही नहीं हो सकती। और रागादि को आश्रमों को क्या कहा है? संयोग सिद्ध संबंध, ये शब्द लिखा है मूल टीका में, संयोग सिद्ध संबंध वाले। और संयोग का अर्थ होता है कि आंग मिले और भग मिले, ये बोला छत्रचूड़ामणि ने ऐसे एक सूक्ति भी दी है, संयोगता नाम योगस्य भवति हि योगता। जो कोई भी जीव को नया संयोग होता है नियम से उसका वियोग होता ही होता है, अगर जन्म हुआ है तो उसका मरण भी होगा, मतलब देह का संयोग मिला है तो देह का वियोग भी होगा। इसी तरह से ये रागादि परिणाम रागवेश परिणाम जो होते हैं ये संयोगी भाव सिद्ध काम को। और महत्वपूर्ण बात जो कही थी, महत्व हर गाथा में वेद ज्ञान बरस रहा है, टपक रहा है, आचार्य अमृतचंद्रा जी के द्वारा इतना खुलासा किया, हम आपको आंख खोली ये दिखते हैं कि अपने कोई ताकत लगाना पड़ती नहीं, मैंने वो सहज स्वभाव है। और क्रोध आदि करना हो तो कुछ उपयोग को बहुत कुछ आतुरता के वेदन के साथ वो करता है, और आतुरता एक लक्षण है किसका? आश्रो का, क्रोधादि का, और वो लक्षण आत्मा का नहीं बन सकता। और ये जीव उसको अपने से एकत्व करके देखता है, यही मिथ्या विक्रय जीव का चल रहा है। और वस्तुतः देखा जाए तो जिनका अभाव ही है, किसमें? एक द्रव में दूसरे द्रव का, कौन सा भाव माना चार भाव में? अत्यंत भाव। तो ऐसे ही सात तत्व हैं, तो एक में जीव तत्व शुद्ध चिन्मात्र ज्योति स्वरूप शुद्ध परम परिणाम भाव, उसमें ये रागादि आश्रय तत्व इसमें कौन सा भाव है? सब चुप हो गए, कौन सा भाव है भैया? अत्यंत का भाव। कल आया था ना गुरुदेव श्री के प्रश्न में चल चुका कि उसमें अतद भाव मानना कि अत्यंत भाव। अरे सर्वथा के कथन चे अंधेरे में उजाला कितने परसेंट, उजाले में अंधेरा कितने परसेंट, यूं देखो। तो वस्तु स्थिति यही है, भले बहुत क्षणिक पर्याय में हो रहे हैं, दृष्टि बार बार वहां जाती है, लेकिन जिसमें ये दर्शित हो रहे प्रकट हो रहे हैं वस्तुतः वो अनुरूप नहीं हुआ, देश रूप नहीं हुआ। तो इनमें दोनों में एक सत्ता की क्या है, अनुपत्ति है। एक सत्ता की दोनों में, मतलब दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। जब सत्ता न्यारी न्यारी तो दोनों के प्रदेश भी भिन्न भिन्न है। फिर दूसरा आधार आदेश संबंध की बात की थी, आकाश किसके आधार से, आकाश के आधार से आकाश से। अरे ज्ञान किसके आधार से, क्रोधा की राधा जी के, राधा जी किसके आधार से ज्ञान के, कैसे क्रोध का आधार क्रोध और उपयोग का आधार उपयोग। वस्तु स्थिति को इसको अपन विचार करें कि सब बात अपने ख्याल में तुरंत आ जाती है। उपयोग उपयोगवान में भेद नहीं है, अभेद है, अन्यपना नहीं है। इनको अन्य अन्य देखना ही अज्ञान है। किसको, उपयोग को और उपयोगवान को। लक्षण भेद करके समझाया तो जाएगा, लक्ष्य लक्षण से भिन्न भेद करके समझाने का है, लेकिन लक्षण कभी लक्ष्य जुदा पड़ सकता नहीं है। और क्रोध जो क्रोधादि जो भी है विकारी भाव, वे कभी आत्मा से एकत्व होने को प्राप्त हो सकते नहीं। लेकिन ये जीव को एक ही काल में ज्ञान भी हो रहा है और क्रोधादि रागादि भी हो रहे हैं, तो इसको ऐसा अनादि से अभ्यास है, अभ्यास है एकत्व का और अभ्यास भी है उसी का। तो इस एकत्व के अभ्यास और अभ्यास के कारण दोनों में वो भेद नहीं कर पा रहा। तो आचार्य इन तर्कों से कि दोनों की सत्ता न्यारी है, दोनों का लक्षण न्यारा है, तो लक्षण न्यारा है तो उससे तुम अपने लक्ष्य को भिन्न कर सकते हो और उसका अनुभव स्पान कर सकते हो। अमृत चंद्राचार्य की टीका में तो अमृत ही अमृत की बूंदें टपकती है। क्यों, आपने देखा उसकी टीका में कभी कोई कोई लाइन ऐसी पसंद आई जिसमें आपको लगा कि अमृत मिल गया? नहीं लगा। फिर जो बोल रहे हैं चेतन भाई तो टपकता ही होगा कि नहीं है रमेश जी? साक्षात अमृतम पिबंती यही मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल चित्त शांत चित्ता साक्षात अमृतम पिबंती। 69 नंबर का कलश है, कर्ता कर्म अधिकार है, साक्षात अमृत का पान करते। अभी चल रहा था ना अभी जी नहीं रहते भेद विज्ञान जगो जिनके घट, वो शुरू में निकला था शीतल चित्त भयो जिमी चंदन के निकल शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकट हो अवदात मिथ्यात निकंदन शांत दशा तिनकी पहचान करें कर जोर बनारसी बंदन। कैसी अद्भुत रचनाएं हुई और अपने को भाग से सब समझ में आ रही, बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार की और भी बात आपने महत्वपूर्ण जो बातें कही थी उसमें खासकर गाथा 92-93 जब तक मैंने इनका स्वयं प्रवचन नहीं सुना था गुरुदेव का, और तब मैं भी बहुत उछला था इन दो गाथाओं को पढ़ के। उसमें ये दो बात दोनों का दृष्टांत है, मुझे ठंडी गर्मी लग रही तो ज्ञान जान रहा है और वो जानना उसने अज्ञानी ने चले उससे एकत्व करके देखता है, मैं गर्म ठंडा हो रहा और इसलिए उसके उसमें अमृतचंद्र का जो लिखा है अज्ञानी के ज्ञान का अज्ञानत्व तो क्या है। ज्ञान तो है तो सिद्ध होगी अज्ञानी के पास, अज्ञानी के ज्ञान का अज्ञानत्व यही है कि दोनों भेद नहीं करता। वो जो शीत आदि है उसना भी वो तो पुद्गल का धर्म है, पुद्गल का कार्य है, और ये अपने आप को मैं ऐसा हो रहा है ऐसा करके एकत्र करके देखता है। जैसे वो मोर का भी दृष्टांत दिया था तो दर्पण में मोर है कि नहीं, और है भी और नहीं भी है, कैसा है
वस्तु की स्थिति यही है, इसको अपन जरा ज्ञान का बताऊ। हम आज सब भोजन करते हैं, ये चीज बहुत खट्टी है, ये चीज बहुत मीठी है, खट्टे मीठे का ज्ञान होता है कि नहीं? ज्ञान तो होता है। वो 49वां बोल आपने दिया था, 49वीं गाथा का 5वां बोल रस का और 6वां बोल दिया, उसमें ज्ञान का रस का ज्ञान होने पर भी दोनों के तादात्म्य का निषेध है। योता अपना जब लगता है कि बहुत मीठा है अथवा बहुत गर्म है बहुत ठंडा है, तो क्या ज्ञान गर्म ठंडा हो जाता है? ज्ञान खट्टा मीठा हो जाता है? फिर क्या होता है? वो खट्टा मीठा मन किससे अभेद है? वो शीत उष्ण किससे अभेद है? अरे धर्म पुद्गल का तो पुद्गल से ही अभेद रहेगा। तो ये भेद ज्ञानी जीव कर सकता है। तो उसमें 92वीं गाथा में अज्ञानी के लिए कही है, अज्ञानी के ज्ञान का अज्ञानत्व देखो, बस इतना समझ लेना, उसको उसमें एकत्व नजर आता है। और वही 13वीं गाथा में 93 में कहा, ज्ञानी के ज्ञान का ज्ञानत्व क्या है? दोनों को जुदा जुदा जान रहा है, दोनों एक ही भोजन कर रहे हो, सब कह रहा हूँ, हाँ वो भी कह रहा हूँ मीठा है खट्टा है, सब तो भी उसको उनमें एकत्व नहीं दिखता, अपने ज्ञान में ज्ञायक बैठा दिखता है। क्योंकि ज्ञान की प्रतिफल उठी तरंग झांकता उसमें आत्म राम, ये तो सिद्धांत है, कब से अनादि अनंत ये रहेगा। ज्ञान की प्रतिफल उठी तरंग झांकता उसमें आत्म राम, और सभी वो है ना सभी आबाल गोपन प्रकट लाइन पूरी बोलू, सुलभ सबको चिन्मय अभिमान। तो ये जो है ना सुलभ सबको चिन्मय अभिमान वालों को बोलो, कौन सी गाथा में आया ये? 17-18 में, वो भी आपने जिक्र किया, पूरे संवर अधिकार तक ला दिया पूरा। तो उसमें बालावल गोपाल फिर को अनुभव में आ रहा है, तो अपने को अनुभव में आ रहा है इतने आ रहा है, थोड़े धीरे दबल दबी दबी जमान से है ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, और थोड़ी जवान बड़ी कहाँ आ रहा है? अरे मैं उपयोग शुरू, लेकिन आगे की लाइन पढ़ो, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध इंग मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर होया भगवान किंतु ना देखा मैंने कभी बस। ये प्राप्ति प्राप्ति की बात है, जीत ज्ञान तू मौजूद है, तेरी सत्ता मौजूद है, तो अपनी सत्ता, अपनी सत्ता कोई क्रोध आदि से नहीं है, अथवा 10 प्राण उजिए सांस चल रही इसलिए भी जिंदा हूँ कि नहीं? तो कैसे जिंदा? अभी डॉक्टर साहब का सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर गया, सांस बंद नाड़ी बंद तो गया कि नहीं गया? कौन गया, कहाँ गया? जीवत शक्ति भी जीवे, चलिए ये तो समय तो दौड़ता है। उसमें बताना ये है कि पारिणामिक भाव के भी दो भेद 320 गाथा में आए, एक शुद्ध पारिणामिक और एक अशुद्ध पारिणामिक। शुद्ध पारिणामिक लिया है शुद्ध जीवत्व, जो पारिणामिक भाव के तीन भेद कहने तत्व सूत्र में जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व नीचे, तो शुद्ध जीवत्व तो है शुद्ध पारिणामिक, और अशुद्ध जीवत्व में रखा भव्यत्व अभव्यत्व और अशुद्ध जीवत्व। ये जैसा नहीं था, अशुद्ध जीवत क्या है? 10 प्राण रूप जीवन, नहीं तो असल कोई भस्म जैसा मतलब दे, ये जीव आदि उसका भी व्यवहार का भी विवेक वहां दिलाया हुआ है। तो उसमें अपने पास पारणा भाव के तीन भेद है ना, उसमें से अपने पास तीनों है कि नहीं? अभी ललित बाबू कितने क्यों एक कान दे? ऐसा जवाब चाहिए मुझे। मेरा मन शुद्ध जीवत और भव्यत, अभव्यत्व कैसे अपने में आ जाएगा? वो तो कहने के लिए मतलब कि उसका कोई जहाँ पर कोई कर्म आदि की अपेक्षा नहीं लागू पड़ती, उसमें कोई योग्यता रूप में नहीं है प्रकट होने। अरे शुद्ध भगवान भव्य के अभव, वहाँ भव्यत्व का भी अभाव हो गया। अरे भव्यत्व का काम तो हो जाना तो हो गए, अब क्या काम करो? ऐसा समय तो कम है। इसके बाद और बहुत दिया था आपने, तो समय सार गाथा 270 भी दिया था। ख्याल है, मेरे बहुत प्रिय गाथा लगती है। बंद अधिकार अपने स्वरूप की स्थिति दिग्दर्शित की है, तीन बिंदु है द्रगुण पर्याय। मैं मारता जलाता हूँ, दूसरे मुझे करते सुख, उसको तो सब क्रिया क्रिया वाली जो था ना, करुण करुण वाला मरुण मरुण था, वो उसको अलग कर दिया आचार्य ने। और कहा ये जीव का तो स्वभाव क्या है, सत आहेतुक व्यक्ति के लिए ये नेचुरल फंक्शन है जीव का, कब से अनादि से सत आहेतुक व्यक्ति क्रिया। मति संतादि की उपाधि छोड़ दो, जानन जानन उसी कारण से उसको उपयुक्त लक्षण था। और उसके बाद सत आहेतुक द्रव्य माने ज्ञायक, ये मानता मैं नारकी हूँ मनुष्य हूँ, मैं ज्ञायक हूँ कैसा सत आहेतुक ज्ञायक। और तीसरा लिया है मैं पर को जानता हूँ धर्मार्थी गाय को, वो तो अब टाइम हो रहा था जीव टच नहीं किया तो उसमें क्या दिया। मैं तो एक सत हेतु ज्ञान ही हूँ, यानी पर के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जो इस प्रकार का आपने ये सारी बात बहुत अच्छे सरल शब्दों में व्यक्त की थी। इसके बाद अच्छा दूसरा भरत भाई तो सभी, और भरत भाई ने उसमें जो प्रश्न पूछा गया था 342 और 340 से बोल लिए थे स्वानुभूति दर्शन के, प्रश्न था कि कहवा में आवे छे कि तुम ज्ञान लक्षण में शोधी का, पर हमारी पासे तो वर्तमान में इंद्रिय ज्ञान छे तो केवी रीते शोध। तो क्या जवाब आया था, हम बोले उसके लिए कुछ थोड़ा कवि इंग्लिश में बनना चाहिए, दृष्टि को अंदर में ले जा तो देख। दृष्टि को अंदर में वो शब्द था कुछ उनका, क्या था शब्द गुजराती में कोई शब्द था देने का भी ख्याल नहीं। दृष्टि को तुम अंतर में मोड़ दे कुछ इस तरह का, वाणी में वाणी कोई शब्द याद नहीं आ रहा, इसलिए अंदर में वाणी। तो इस प्रकार देख के तुझे इस चीज स्वरूप समझ में आएगा। इंद्रिय ज्ञान ज्ञेय से अभिन्न है, परंतु वह ज्ञान तो ज्ञायक में से आ रहा है ना कि इंद्रियों में से। इसको मैं संक्षेप में एक छोटे से दृष्टांत से पूरा करता हूँ, समय हो रहा है वो भी ख्याल है, आप अलाउ करें तो 2-3 मिनट लेता हूँ। एक यहाँ पर बहुत बड़ी माटली हो मिट्टी का और ऊपर 5 छिद्र हो और उसमें कोई जलता हुआ दीपक रखा हो और ऊपर से ढक्कन हो और हम सब बाहर से आए तो देखें, अरे ये क्या चंबा है, ये माटली में से प्रकाश आ रहा है और 5 छिद्रों में से प्रकाश की किरण ऊपर छत को टच कर रही होंगी, है ना। तो मैं पूछता हूँ प्रकाश किस में से आ रहा है नवल गुण जी, पहले क्या शब्द निकलेगा, घरे में से। दीपक कहाँ देख रहा है आपको, किसको पता है, वो तो ऊपर ढक्कन है, उन 5 छिद्रों में से प्रकाश आ रहा है तो क्या कहेंगे, अरे देखो घड़े में से प्रकाश आ रहा है। जब 5 में पहुंचे तब क्रीड भाई क्या बोलेंगे, घड़े में से नहीं आ रहा, छेदों में से आ रहा, कहाँ से आ रहा है, छेदों में से आ रहा है प्रकाश, देख रहा है बात करें इंद्रिय। बाद में कोई कहेगा भैया छेदों में से प्रकाश आ रहा है और इतना ढक्कन उठा के बताया दिखाया तो क्या मिलेगा, तो वो प्रकाश किसका है, घड़े का कि छेदों का, कितने परसेंट नहीं मिला। ऐसी मिट्टी का घड़ा है शरीर, इसमें स्पर्शन इंद्रिय आदि 5 इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो ज्ञानन क्रिया हो रही है किसकी, पर उद्गल भियों की, वो ज्ञान किसका है, शरीर रूपी घड़े का, इंद्रियों रूपी छिद्रों का। तो ज्ञान तो ज्ञान का ही है और इस व्यक्त लक्षण से उसको पूरा समझ लेना चाहिए। और आचार्य ने समय सार में तो और भी दृष्टांत दिया है, उसमें से ये सोचा मैंने कि किसी ने वो घड़े में दीपक रखा है और किसी ने डंडा मार दिया घड़े को, घड़ा फूट गया तो दीपक का नाश होता है, नहीं होता। और यदि दीपक बुझ जाए तो घड़े का नाश होता है, तो नहीं होता। कि दोनों की सत्ता अपनी अपनी जगह रहती है, बस व्यवहार से ऐसा कहने में आएगा घड़े में दीपक है, व्यवहार से कहने में आएगा इस शरीर में आत्मा है, व्यवहार से कहने में आ गया इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। तो इंद्रिय ज्ञान क्यों कहा, तो ज्ञान की पराधीन ही प्रवृत्ति इतनी ही भगवान ऐसी कहा जाता है। इस पर सदस्य वर्ण आदि को ही जान पाता है, वो अपेक्षा से वो किसी भी प्रकार से रूप की आत्मा को नहीं जान सकता, इसलिए उसका ही पन सिद्ध किया और भी बहुत लिया था। और इसके बाद 340 बोल में भी था, तभी यही में इसमें था प्रश्न था, ज्ञानी ना इंद्रिय ज्ञान मान कहीं भेद करो, तो कहा था बाहर की इंद्रियों को जानने की अपेक्षा दोनों का ज्ञान सही था, समान है, किंतु दोनों की दिशा जुदी है। ज्ञानी को यथार्थ ज्ञान भेद ज्ञान सहित है, और ज्ञानी इंद्रिय ज्ञान वाला को स्वभाव मान लेता है इंद्रिय ज्ञान को, जबकि ज्ञानी उसे स्वभावभूत नहीं मानता, और वो इंद्रियों की मध्यम मानता है, लेकिन वो ज्ञान वास्तव में इंद्रियों का नहीं है, वो ज्ञाय का ही अज्ञाय को प्रसिद्ध करता है। पर सत्तावलंबी ज्ञान अपने काम का नहीं, इंद्रियों वाला ज्ञान उस पर कैसा है, पर सत्तावलंबी, और स्वयं सत्तावलंबी ज्ञान कौन है, वो पर में भेदियों में अटकता नहीं भटकता नहीं, भले जानता हुआ भी जानने वाले को जानता रहता है, ये ज्ञान इनका ही ज्ञान रही है। और डॉक्टर साहब के प्रवचन में तो सबने सुनाई है, जो उनकी तर्क शैली है वो अच्छो अच्छो को चुप कर देने वाले डॉक्टर उत्तम चंद्र जी, समझे। और क्या विषय दिया था, रहस्य कौन चित्त, रहस्य बताया था ना पूरा, इस प्रकार से इस रहस्य को भी अगर अपन समझ जाए तो वास्तव में अपन भी आत्म उपलब्धि को, और बहुत सरलतम कार्य, इसलिए इसका प्रसार जागृत करना ही चाहिए वेद ज्ञान ज्योति के द्वारा, और तो अंदर से लगेगा वेद ज्ञान साधु भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबी निर्मल की धोबी बनना पड़ेगा, उसके बिना अंदर में स्वच्छता प्रकट नहीं।
बढ़िया प्रश्न है, सौदा करने वाला प्रश्न है, और सौदा का करने का अधिकार अपने को नहीं, यह लिखा है आज आपने अपेक्षावश केवल ज्ञान की पर्याय को नो कर्म की कक्षा में रखा था, वह मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्या आप उसको भाव कर्म की कक्षा में रख सकते हैं, मैं थोड़ी रख सकता हूँ, वो अगर भाव कर्म की रक्षा लायक हो, यहाँ तो पक्ष ही दो थे, समझ आएगा नहीं, एक तो आत्म पक्ष था और एक नो कर्म वाला पक्ष था बाहर के पदार्थों के लिए। अब बाहर के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, जो कि हमारे राग होने में निमित्त बनते हैं, वे सभी चेतन पदार्थ नो कर्म में आते हैं, पुण्य के उदय में मिलते हैं अथवा पाप के उदय में मिलते हों, लेकिन सुख दुख के कारण है, नवीन राग के भी उत्पत्ति के कारण बनते हैं, ऐसे जितने भी पदार्थ हमारे बाहर मौजूद हैं और राग के कारण है, उन सबको नो कर्म कहते हैं। इसलिए ये तुम्हारे से जो ज्ञान की भी जो पर्याय है, अगर हम इस पर नजर डालते हैं तो भी रागादि भाव की उत्पत्ति होती है, और रागादि भाव की उत्पत्ति से क्योंकि उनसे नवीन कर्म आते हैं, और उन नवीन कर्मों से वो जब उदय में आते हैं तो वो उदय में आने वाले भाव भी नौकर्म में शामिल हो जाते हैं, तो ये परंपरा से उनको नौकर्म में शामिल कर दिया गया है। और अगर भाव कर्म में भी शामिल कर दें तो भी प्रश्न तो ये है कि भाव कर्म भी अपना स्वभाव नहीं है, तो उसमें शामिल कर देने से अपने को कौन सा फायदा हो जाए, एक। दूसरी बात यह है कि चूंकि नवीन कर्म उत्पन्न करते हैं, नवीन भाव पैदा करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो भाव कर्म ही है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाव कर्म के साथ साथ द्रव्य कर्म भी होता है, आश्रय द्रव्य कर्म का। और द्रव्य कर्म जब बंधन को प्राप्त हो जाता है, उसका उदय आता है, तो जो भी संयोग फिर बनते हैं वे सब संयोग लो कर्म में आ जाते हैं। इसलिए वो भले मूल शुरुआत वहां से हुई हो, लेकिन परंपरा कारण तो वो नौकर्म में आने वाली चीज के कारण बनते हैं। ये अपेक्षा से उसको नौकर्म का, और वहां अपन को सही डिवीजन करने की बात नहीं है। सही डिवीजन करें तो वो तो आत्मा की निर्मल पर्याय है और वो आत्मा से अभेद है। क्या भाव, सही डिवीजन तो ये है, लेकिन यहाँ भी भेद ज्ञान से दृष्टि की प्रमुखता से स्वभाव में किनको शामिल करना और नौकर्म में किसके लिए रख देना, ये दो पक्ष रखे थे अपन, तब उसको कौन से पक्ष में रखें। और भाव कर्म में भी रखें तो भाव कर्म भी आगे की पर्यायांतर होके नौकर्म में के पक्ष में चला जाए, ये अपेक्षा रखा था। जिसमें अपन रख करके भी अगर संतोष होता हो तो रख लो, कोई बात नहीं है, बाकी मतलब कुछ नहीं हो सकता है। आज आपने पंडित हिम्मत भाई बड़े वर्णी जी और पत्रावली की बात की, ये पत्रावली क्या है और उसके बारे में विशेष जानकारी देने की कृपा करें। ये पत्रावली छपी है तुम्हारे से वर्णी ग्रंथमाला से, यहाँ से बनारस से, और कई पत्रावलियों में पर इतनी छोटी इतने मोटे मोटे वो तुम्हारी पुस्तकें हैं, कम से कम 8 भाग तो मेरे पास हैं ऐसे में, और छोटे छोटे भाग भी छपे हैं ऐसे, कोई 10-12 भाग मौजूद हैं। और पत्रावलियों को भी आप पढ़ोगे भरपूर तत्व ज्ञान से भरपूर, मैं सब पढ़ी है हेलमैगनी, और सब अध्ययन करके रखे हैं अपने, सुरक्षित हैं, और उनके जब कोटेशन की जरूरत भी पड़ती है तो वो बात में बताते हैं। तो ये पत्रावली मेरे पास उपलब्ध है, अगर आप कोई पत्र चाहें तो उसका हम फोटो कॉपी करा के दे सकते हैं। हल्दी चूना का मिश्रण और आपको ले, दो आप
विकारी अविकारी समस्त पर्यायों को एक ही खाते में रखे या इनमें भेद करें, समझाइएगा। पर्याय जीव से सर्वथा भिन्न है ऐसा भाव होना है, ऐसा है कि विकारी अविकारी समस्त पर्यायों को जब दृष्टि का विषय की बात चलती हो तब तो वो एक ही खाते में रहती है। अभी संवर की बात जब चलती है तो आश्रम से वेदनाम करने वाली संवर वाली जो पर्याय है वो आत्मा से अभिन्न हो जाती है, ऐसा इसका अर्थ है। आज के पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में प्रारंभ में आया था कि आत्मा निर्विकल्प नाम में प्रतिष्ठित है, राग द्वेष में नहीं। अब प्रश्न होता है कि निर्विकल्प नाम में प्रतिष्ठित आत्मा, ज्ञानी की निर्मल परिणति में प्रतिष्ठित आत्मा और अज्ञानी के उपयोग में प्रतिष्ठित उपयोग में कोई अंतर है? हाँ, सब में अंतर है। अज्ञानी का जो उपयोग है वो उपयोग में उपयोगवान प्रतिष्ठित है, वो तो परोक्ष है, और जब ज्ञानी वो होता है तब उसका उपयोग में उपयोगवान प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है, वो वेदन पूर्वक प्रत्यक्षता है। और वो परोक्ष में वेदन नहीं है, मगर परोक्ष में इतना है कि वो बाहर से अपना उपयोग को समेट के यहीं पे ही खड़ा है कि मेरा उपयोग में क्या है, कि मेरा उपयोग में उपयोगवान है और कुछ नहीं है। तो ऐसा जिसके ख्याल में ये चीज आ जाती है उसको नियम से सदुपयोग होता है, तो उसको ज्ञानी बोला जाता है। इसलिए गुरुदेव ने इस तरीके से बात की कि निर्विकल्प ज्ञान में आत्मा प्रतिष्ठित है, या तो शुद्ध परिणति में आत्मा प्रतिष्ठित है। बाकी उससे पहले सचमुच में तो उपयोग लक्षण है, उसमें आत्मा प्रतिष्ठित अनादि से है, ऐसा जिसको ख्याल आ जाता है उसको निर्विकल्प दशा आ जाती है, इतना अंतर है उसमें। आज के आपके प्रवचन में आया कि आचार्य श्री जब निर्विकल्प दशा से च्युत होते हैं तब उनकी कलम से शास्त्र की रचना होती है, क्या इसका मतलब यह होगा कि जब आचार्य श्री अप्रमत्त दशा में होते हैं तब उनकी कलम रुक जाती है? नहीं रुकती है, निर्विकल्प दशा में भी कलम रुकती नहीं है। आज के आपके प्रवचन में आया था कि अपने स्वरूप से च्युत होकर आत्मा जब द्रव्य कर्म का लक्ष्य करता है तब राग की उत्पत्ति होती है। प्रश्न है कि आत्मा अति सूक्ष्म द्रव्य कर्म का लक्ष्य कैसे करता है? देखो, ऐसा है कि द्रव्य कर्म दिखता नहीं है, मगर द्रव्य कर्म ही निमित होता है। जैसे विग्रह गति में जीव जाता है तो उस समय नौ कर्म की हयाती नहीं होती है, उस समय द्रव्य कर्म ही होता है, तो द्रव्य कर्म ही निमित होता है और द्रव्य कर्म का निमित पड़ा से ही नैमित्तिक भाव भाव कर्म में चलता है। नहीं नहीं वो चलती है, वो गुरुदेव ने भी बोला है ऐसा, वो चलती भी है, ये बात भी ठीक है। उसी का मतलब तो यही बोला जाता है कि आचार्य भगवान होते हैं, उसकी जो निर्विकल्प दशा चलती है वो अंतर्मुख वाली ही सदाई होती है। अभी विकल्प जब आता है तो कलम ऐसे रुक जाती नहीं है, और निर्विकल्प दशा का काल तो इतना बहुत माने कि छोटा काल होता है। गुरुदेव ने बताया है पौनी सेकंड से आधा भाग की माने कि उसकी दशा होती है ऐसी, तो उसमें कलम रुकती नहीं है। ये चर्चा अपनी भी पहले हो गई है रजनी भाई के साथ में, और दो जगह अपन ने पूछ भी लिया था, आप अपनी बात हो गई है, वो ऐसा ही है। हाँ वो चलता है।
देखिए यहाँ लिखा है आज सुबह श्री भरत भाई जी की कक्षा में प्रवचन में ये बात आई थी, अभी तो हमारे पास इंद्रिय ज्ञान ही है तो अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे हो सके, कृपया आप इसका दृष्टिकोण बताइए। देखो भाई ऐसा नहीं, पहले इंद्रिय ज्ञान क्या है और वो इंद्रिय ज्ञान ही अतीन्द्रिय कैसे बनता है, मतलब दोनों विधि बताना चाहे। इंद्रिय ज्ञान तो ये कि पैदा जो ज्ञान हो रहा है और वो जो बाहर जा रहा है वो हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से और मन के विकल्पों के माध्यम से बाहर के गए पदार्थों को पकड़ता है, आयोजन तो वो कहलाता है ज्ञान, जो बाहर मुखी होकर इंद्रियों के माध्यम बना के और विकल्प भी पढ़ के बना करके जाता है वो सब ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। और अतीन्द्रिय ऐसे बनता है कि जिनके आश्रय से वो इंद्रिय ज्ञान बनता है उनका आश्रय छोड़ के अगर वो स्वभाव का आश्रय ले ले तो वो ही ज्ञान इंद्रिय नाम नहीं पाएगा, वो अतीन्द्रिय ज्ञान नाम पाएगा, वही इतना सारा। हल्दी चूना का मिश्रण उदाहरण रूप जीव पुद्गल की पर्यायों की मिलावट का नाम राग द्वेष है, या आहार वर्गना का सूक्ष्म प्रणमन है, या जीव सर्वथा जीव से भिन्न है, कहाँ पर सेंध है जहाँ प्रज्ञा छेणी लगा हुए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो भाई ऐसा है, प्रज्ञा छेणी तो एक ही अकेली नहीं लगाना है, सेंध बहुत है इसमें, ऐसे नहीं एक जड़ कर्मों वाली सेंध अलग है, वो छेनी अलग नए की लगेगी, इसके बाद में राग द्वेष वाली सेंध अलग है, वो राग द्वेष वाली सेंध पर भी छेनी लगेगी, पर सब जो भले छेनी अलग अलग लगे और अलग अलग नए भी लागू हों पर वे सब प्रभाव है। क्या कहा, चाहे वो पुद्गल रूप प्रभाव हो रूप में वर्णादि के रूप में प्रभाव हो, चाहे रागादि के रूप में प्रभाव हो, दोनों प्रभाव है और सेन दोनों ही में है और दोनों ही को न्यारा करना है। जिन परम पेनी सुबुद्धि छेनी डार अंतर भेद दिया, अब कहाँ कहाँ भेद किया, वर्णादि जितने भी वर्णादि पदार्थ हैं उन सब को एक ही जो प्रज्ञा छेनी चलाई वे सब न्यारे हो गए, और वर्णादि वर्णादि में रागादि सब आ गए, सब प्रकार के जितने वर्णादि है जितने भी रागादि है, और रागादि जो है वो भाव कर्म के रूप में आप ग्रहण कर सकते हो, और वर्णादि जो है जितने भी संयोग हैं जो अपने निमित्त के राग के निमित्त कारण बनते हैं या द्वेष के निमित्त कारण बनते हैं ये सब वर्णादि और ये सब रागादि, इन इन दोनों को ऐसा निर्णय करना है कि दोनों जड़ हैं। कैसे हैं जड़, भले रागादि की उत्पत्ति चेतन पर्याय में होती पर वे स्वयं चेतन नहीं होते, क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें स्वपर प्रकाशक ज्ञान नहीं है, उनमें स्वपर प्रकाशक चेतना नहीं है, इसलिए वे रागादि भाव भी अचेतन है और वे प्रकट जो रूपी पदार्थ हैं, वे भी सब अचेतन। ऐसे इनको रूपी को जानकर और अपने को अरूपी जानकर, ये रूपी की ऊपर छेनी चलाओ, न्यारा करो, और न्यारा करने का अर्थ है कि दृष्टि इनसे हटाओ, अब इन पे दृष्टि मत लगाओ, और रागादि को भी अपने स्वरूप से भिन्न जानकर, आकुलता रूप है, दुखमय है, स्वपर प्रकाशक नहीं है, ऐसा इनको भिन्न जानकर इनको भी प्रज्ञा छेनी से न्यारा करो और इनसे दृष्टि हटाओ, और मैं आत्मा ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा दर्शन ज्ञानमय हूँ, ऐसा जो अपना स्वभाव है उस स्वभाव पर दृष्टि लगाओ, तो ये जो तुम्हारा कहना चाहिए प्रज्ञा छेनी चलाने की बात है, बस ये दो ही जगह है जहाँ चलानी है मुख्य पड़े, एक तो वर्णादि और दूसरा रागादि, तो 29 प्रकार के भाव न्यारे हो जाएंगे वर्णादि और रागादि में, ऐसा भी तो वो ज्यादा बात नहीं की गई है, संक्षेप में इतना ही ध्यान में रखना है। और अगर ये भी ध्यान न रहे तो इतना ध्यान रखो कि हमें ऐसी छेनी चलाना कि मेरा स्वरूप ज्ञानमय है, बस ये तो मैं हूँ और बाकी अपने आप न्यारा हो जाए, समझ में आएगा नहीं ऐसा।
आपने आज बताया कि दृष्टि के विषय के पक्ष में भी खींच नहीं जाना चाहिए और पर्याय की सर्वथा उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्या पूज्य सोदानी जी के द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अभ्यास करते रहने से दृष्टि के विषय का पक्ष नहीं आ जाएगा? ऐसी बात है कि दृष्टि का विषय तो अपना मूल विषय है, उस पर दृष्टि जाने से ही काम होता है, मगर दृष्टि के विषय के विकल्प करने से काम नहीं होता है। होता क्या है कि दृष्टि का विषय जिसको थोड़ा सा भी पता चल जाता है तो मेरे ख्याल में ऐसा भी अभी आ रहा है कि उसका पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है, तो ये पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए दृष्टि का विषय की प्रतीति करने के लिए सोदानी जी का शास्त्र है। ऐसा नहीं है कि खाली दृष्टि का विषय का विकल्प चले, इसके लिए सोगानी जी ने द्रव्य दृष्टि का उपदेश नहीं दिया, और सोगानी जी ने भी जो द्रव्य दृष्टि का उपदेश दिया है वो सबसे पहले भेद ज्ञान में उसको अनुभूति हुई है, राग भिन्न और ज्ञान भिन्न, बाद में उसको दृष्टि का विषय का जोर चढ़ा है, तो पहले जीव को राग से पृथक होके अपना ज्ञायक का दर्शन करना चाहिए, तभी वो ज्ञायक की यथार्थ महिमा उसके ज्ञान और श्रद्धा में चलती है। और ऐसी बात नहीं है इसमें कि ज्ञायक का महिमा नहीं करना, दृष्टि का विषय को नहीं घुटना, उसको घुटने से ही श्रद्धा की सम्यक्ता आती है, मगर उसके पहले ज्ञान में निर्णय की यथार्थता बहुत जरूरी है, और ज्ञान का विषय ही दृष्टि के विषय को सचमुच में विषय देता है। ज्ञान है न वो दृष्टि पोषक ज्ञान होता है, वो दृष्टि को पोषण देता है, वो दृष्टि को पोषण देने वाला ज्ञान जो है उस ज्ञान की यथार्थ निर्णयता जब तक जीव के ज्ञान में नहीं आती है तब तक आप दृष्टि का विषय का विकल्प करने से श्रद्धा में समीकत्व नहीं आता है। इसलिए कोई पक्ष से दृष्टि का विषय को नहीं देखना कि मैं यही हूँ यही हूँ, ऐसा विकल्प करने से कार्य नहीं होता है, समझ से कार्य आता है, ऐसा कहने का मतलब है कि दृष्टि का विषय की खेचा में ज्ञान का द्रोह नहीं होना चाहिए, ज्ञान को साथ में रख के दृष्टि का विषय को घुटने की बात है। अगर ज्ञान को ऐसे ही अलग कर देगा और दृष्टि का विषय यही है और बाकी कुछ है ही नहीं, ऐसे दृष्टि का विषय पर दृष्टि नहीं पड़ती है, कहने का आप ये है। और द्रव्य दृष्टि दृष्टि के विषय का पक्ष नहीं आ जाएगा द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अभ्यास करने पे, द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अभ्यास यथार्थता से करने से पक्ष नहीं आता है, वो यथार्थता से जब तक अभ्यास नहीं करता है तो पक्ष में ही खड़ा रहने वाला है, वो पक्षातिक्रमण नहीं होगा। दृष्टि का विषय और पर्याय के प्रति बैलेंस रखना, ऐसी आज बात आई, इसके बारे में स्पष्टीकरण कृपया करें, दृष्टि के विषय का महिमा उसके पक्ष लिए बिना कैसे आएगा? पक्ष से कोई चीज का महिमा नहीं आता है, उसका स्वरूप जानने से महिमा आता है, उसका पक्ष करने से महिमा कभी नहीं आता है। दृष्टि का विषय का जब स्वरूप यथार्थ रूप से अपने जानने में आ जाता है तो समझ में उसकी महिमा चलने लगती है। ऐसे विकल्प करने से महिमा नहीं होती है दृष्टि के विषय की, उसका स्वरूप जानने से उसकी महिमा आती है। तो उसका स्वरूप यथा स्वरूप जानने में आएगा तो उसकी महिमा सहज में आके दृष्टि सहज में उधर चली जाएगी, उसमें फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। अगर स्वरूप समझ में यथार्थ आ जाता है ज्ञान में तो दृष्टि सहज में चली जाती है द्रव्य के ऊपर। ऐसी बात एक ये भी लीजिएगा आप ज्यादा स्पष्ट कर पाओ।
यह लिखा है स्वरूप संबंधी विकल्प में मतिज्ञान और श्रुतिज्ञान में अलग अलग प्रकार के विकल्प होते हैं, ऐसी बात आज आई उसे भेद को ऐसे भेद के बारे में स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। ये स्पष्टीकरण हम कल करेंगे क्योंकि यही प्रकरण चलाना है कल 144 नंबर गाथा, जिसमें मति ज्ञान तत्व को समेटने की बात है और श्रुत ज्ञान तत्व को समेटने की चर्चा है, कैसे समेटना है वो चर्चा कर लेंगे इसकी है। और आज आपने भावमन व श्रुत ज्ञान का उत्कृष्ट भेद है, भावमन श्रुत ज्ञान का उत्कृष्ट भेद है और अनुभूति को मन जनित भी कहा जाता है ये बात कही थी। भावमन और मन जनित अनुभूति के बारे में स्पष्ट करें। देखो वो इस अपेक्षा कहा था कि जो द्रव्य मन है और पांचों इंद्रियां हैं इनका विषय तो पर है, इनके पर के ही विषय में विकल्प करती हैं। द्रव्य मन का आलम्बन जब भी होगा ज्ञान के द्वारा भाव मन के द्वारा तो विकल्प होंगे पर समय, लेकिन अगर वो द्रव्य मन का आलम्बन छोड़कर स्वभाव का लक्ष्य करके और इंद्रियों का तो आलम्बन पहले ही छूट जाएगा। भाव मन के माध्यम से अंतर्मुखी वृत्ति करके और द्रव्य मन का आलम्बन जैसे ही छूटता है वहाँ इधर भाव मन आत्मा में कहना चाहिए आत्मा में स्पर्श करता, आत्मा को छूता और उस अपेक्षा वहाँ आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाती। तो अनुभूति प्रकट होने के पहले प्रवृत्ति जो चली है वो भाव मन में चलती है, समझ में आएगी नहीं, इसलिए उस अनुभूति को भाव मन जनित भी बोला जाता है, समझ में आएगी नहीं। ये बात कहाँ लिखी है, ये बात एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंतर्गत अंत में आई कि इसको मन जनित भी बोलते। देखो आपको
दोस्तों इच्छा है ठीक है और ये भी अपेक्षा है कि भावमन बिना द्रव्यमन के होता ही नहीं, सुनना
ठीक है।
तो उसने कहा कि द्रव्यमन के अवलंबन से जो भावमन अपने ही बारे में भेद कर रहा है गया है कि गया है ये विकल्प मन ही रह जाते, ये अपेक्षा थी मतलब विकल्प मैंने कहा है तो वो मन जनित कहा है और उसको सत्यप होगा तो भावमन शब्द जहाँ पर किया जाएगा तो आदमी की अपेक्षा थी मन होता ही है
ऐसा लिखा है। इसी मेरे अपना जो स्वानु अपना क्या बोलते हैं आज जो चिट्ठी चली ना वो चिट्ठी में भी ये बात आई है कि ये उस समय इतने सूक्ष्म विचार होते हैं कि एक तत्व ज्ञान तत्व मात्र उसका रह जाता है, वहाँ द्रव्य मन का आलम्बन हटकर और अपने जो भाव मन है वो स्वभाव में परिवर्तन करने लगता है।
सामान्य कथन ठीक है, द्रव्य मन का आलम्बन तब मन जनित जो विकल्प चल रहे थे अंतर देवी उठ जाते हैं
और वो भी केवल द्रव्य मन के अवलंबन छोड़ने की बात इसलिए कही कि वो अंतर्मुखी जो परिणाम होंगे वे तो अभी अंतर्मुखी परिणाम भाव मन के निमित्त से होते रहे और अनुभव भी हुआ है वहाँ भाव मन ही मौजूद है, कोई दूसरा मौजूद नहीं है क्योंकि बाहर में गुण स्थान तक वो चलेगा चल मैं कि नहीं। इस दृष्टि से जो अनुभूति के काल में निमित्त मौजूद रहता है वो भाव मन के ही रहता है, इससे उसको मन जनित बोला जाता है। तो इन्होंने तो जो प्रश्न पूछा है इन्हने ये पूछा है जब ध्यान दें कि आपने भाव मन श्रुत ज्ञान का उत्कृष्ट भेद बताया, ख्याल मैं तो वो श्रुत ज्ञान का यह भेद है कि किसी और का, भाव मन श्रुत ज्ञान ही है, समझ में आएगा नहीं। और उसका उत्कृष्ट भेद इसलिए बताया कि वो अनुभूति में निमित्त बनता है, समझ में आएगा नहीं, इसलिए उसको उत्कृष्ट बताया और अनुभूति में निमित्त बना इस अपेक्षा मन जनित भी अनुभूति बोली जाती है। ऐसा कथन किया है, तो ये बात बताई थी। हाँ आप बताइए।
वो कृष्ण मूर्ति जी में वो बात आई है, वो मंजरी है, वो इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि पहले मन का अवलंबन से वो जैसे आत्मा स्वरूप है वैसा ख्याल में लेते हैं, और फिर उसका मन जो विश्राम पाए प्राप्त कर जाता है तो आत्मा की अतिद्रिय अनुभूति प्रकट होती है। जितना स्वस्वेदन ज्ञान है आत्मा को अनुभव करता है वो अतिद्रिय ही है, और उसके साथ में जो कर्मधारा चलती है, राग की धारा भी चलती है और इंद्रिय ज्ञान भी चलता है, वो बारह गुण स्थान पर चलता है, वो मन जमीन है, ऐसा कह सकते हैं। जो अतिद्रिय ज्ञान की धारा प्रकट होगी, जो ज्ञान धारा प्रकट होगी वो अतिद्रिय ही है, और जिसमें साथ में जो कर्मधारा चलती है वो मन जमीन है। इस प्रकार से दोनों प्रकार से उसको देख सकते हैं, इसलिए उसको अतिद्रिय भी कह सकते हैं। वो पर्याय तो साधक की ही है, तो साधक की पर्याय जो ज्ञान धारा में चलती है वो अतिद्रिय है, और जो राग धारा चलती है वो मन जमीन है।
बराबर ठीक है। यहाँ एक और लिखा है इन्होंने कि आपके जीवन में, ये तो बहुत गजब लिखा है, दोनों विद्वानों के लिए लिखा है, बल्कि सभी विद्वानों के लिए लिखा है, आपके जीवन में कोई विशेष अनुकूलता या विशेष प्रतिकूलता के प्रसंग आए हों तब किस तरह से आपने भीर ज्ञान किया और परिणामों को संभाला, कृपया आप ऐसा एक अनुभव बतावें ताकि मेरे लिए वो प्रेरणा रूप हो और मार्गदर्शक हो। भैया हम अपनी घटना बतावें तो केवल तुम्हें प्रेरणा की विधि बताओ।
आप अपने ऊपर घटी घटना पूछ रहे हैं,
उसका तो यही है भैया, कोई भी घटना घटती है अपनी इच्छा के विरुद्ध जो घटनाएं घटती हैं उस समय क्या करना, उस समय ये ही करना है कि वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं केवल जान सकता हूँ और तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो जब भी घटनाएं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध भी जावे, तुम्हें अनुकूल ना लगे या प्रतिकूल लगे, उस काल में आप भेद ज्ञान करके ये जानिए कि ये इनका परिणाम ऐसे ही होना है, इस परिणाम में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और आप शांत होकर ज्ञाता दृष्टा रहे, यही तो तरीका है उससे उनसे निपटने का, उन अनुकूलता और प्रतिकूलता होंगे, और तो कोई तरीका है नहीं। अब हम भी ऐसे ही निपटे हैं और तुम भी ऐसे ही निपटना, क्या करे। आप भी सुना दो, अब ठीक नहीं हो
आपने बोला
आप बोला
मोटे भागे आप प्रश्नों ना जवाब खूब टुकान में आपो छो, નીચેના પ્રશ્નનો ઉચિત વિસ્તારથી ઉત્તર આપવા વિનંતી છે। અનનોન માંથી અનનોન ની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી, પરંતુ નોન માંથી અનનોન તરફ જઈ શકાય છે। આજે રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠીમાં આવ્યું હતું કે સ્વરૂપ જ્ઞાની જીવ, અમારા જેવા મિથ્યાદ્રષ્ટિ જીવ જેને હજી આત્માનો અનુભવ થયો નથી, સવિકલ્પમાંથી નિર્વિકલ્પ થવા માટે હું શુદ્ધ છું, ચિદરૂપ છું આદિ અનેક વિકલ્પો દ્વારા સ્વરૂપમાં એકત્વ કરે છે। હવે પ્રશ્ન એ છે કે જેણે પહેલા આત્માનો અનુભવ કર્યો નથી, જેને શુદ્ધ ચિદરૂપ આત્મા કેવો છે તેની ખબર નથી, તો તેને પહેલી વાર આત્માની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે થશે? એને બદલે જ્ઞાન લક્ષણ થી લક્ષિત આત્માનું ધ્યાન કરવાથી નોન ટુ અનનોન માં જઈ શકાવું જોઈએ? એ જ્ઞાન ની આવી પ્રયોગ વિધિ વિશે આપનું મંતવ્ય સમજાવવા વિનંતી છે। અચ્છા ઇસમે એસા હૈ કે અપના જો ये प्रकरण चल रहा है ना ज्ञायक और ज्ञान का, तो उसमें जो ज्ञान लक्षण है ना उसमें तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अभी ये जो प्रकट ज्ञान है ना वो स्वपर प्रकाशक है, वो ज्ञान अभी वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है कि उसमें अनेक तरीके के ज्ञेय प्रतिभाषित होते ही रहते हैं। अभी ज्ञेय प्रतिभाषित होते हैं तो ज्ञान की स्वच्छता अगर नहीं होती तो ज्ञेय प्रतिभाषित ही नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो उसको ये भेद ज्ञान की विधि समझनी चाहिए पहले में पहले, कि इसमें ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है और ज्ञायक क्या है। माने कि ज्ञायक है उसकी ज्ञान की किरण है और बाहर में ज्ञेय है, तो ज्ञान का ज्ञानत्व स्वभाव है और ज्ञेयों का ज्ञेयत्व स्वभाव है। तो प्रत्येक समय में ज्ञेय झलकता ही रहता है ज्ञान में, वहीं पे प्रयोग चलना चाहिए, जैसे अपन ने आज दृष्टांत लिया था वो मोर वाला, कि वो विधि ये एक ही है। ज्ञान का वास्तविक ख्याल जीव को स्वपर प्रकाशक स्वभाव में से कैसे स्वज्ञायक में जाना, वो उसका टर्निंग पॉइंट यहाँ ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव में पड़ा है। सबसे पहले तो उपयोगवान है, उसका उपयोग प्रकट होता है, उसका उपयोग स्वपर प्रकाशक है, और स्वपर प्रकाशक में वो स्वपर प्रकाशक में से स्व में कैसे जाना और ज्ञेय से कैसे छूटना, ज्ञेय की दृष्टि और ज्ञेय का लक्ष्य कैसे छोड़ना, और ज्ञान की स्वच्छता को देख के ज्ञान में जाननपना है उसमें जाननहार कैसे जानने में आता है, उसका निर्णय उसको यथार्थ रूप से पहले में पहले करना चाहिए। अभी ज्ञेय प्रतिभास होना बंद नहीं होने वाला है, ज्ञेयों का प्रतिभास बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ स्वच्छता है। अभी ये चीज है ना, इसमें प्रतिभास नहीं होता है ज्ञेयों का, तो उसका मतलब ही ये है कि ज्ञान की स्वच्छता कायम रह गई है, मलिन नहीं हुआ है ज्ञान, वहां स्वच्छता है, इसीलिए ही प्रतिबिंबित होता रहता है ज्ञेय, और वो स्वच्छता में से इस ज्ञेय को अपन निकाल नहीं सकेंगे। वो कलश आता है 14 कलश पीछे भंग वाला, उसमें ऐसी बहुत चर्चा आई है, बहुत अच्छे कलश है वो, साल में एक बार तो गुरुदेव के मुख से सब लोगों को सुनना चाहिए, तो उसकी ये जितनी सारी भ्रमणाएं ज्ञान में चलती है ना, वो सब निकल जाएगी। तो उसमें ज्ञेयत्व प्रतिबिंबित होता ही रहता है प्रति समय, तो उसमें ज्ञेयत्व प्रतिबिंबित होता है, तो उसी समय वो ज्ञान ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार बनता है प्रति समय। वो ज्ञानाकार माने ज्ञान तो है ही वहां, मगर ज्ञेयाकार भी उधर बनता है उसी समय, तो वो ज्ञेयाकार बनता है, वो मटेरियल तो ज्ञान का ही है, मगर वो मटेरियल ज्ञेय के जैसा होने से वो उसको ज्ञेयाकार नाम दिया गया है, तो वो ज्ञान ही, वो ज्ञान का आकार ऐसा भी नहीं, वो ज्ञान ही है वहां। अभी जब तक उसको वो ज्ञेयाकार ज्ञान दिखता है, उसमें ज्ञेय की भ्रांति चलती है जब तक, तब तक उसको ज्ञान का सम्यकपना होने में बाधकता चलती रहती है। अभी उसको वहां ऐसा दिख जाए, ज्ञेय भले प्रतिभासित हो गए, ज्ञेय को भी हटाना नहीं है, ज्ञेयाकार को कोई हटा नहीं सकता है। अभी उसी समय में भेदनान करना है कि ज्ञेयाकार ज्ञान है, मगर वो मात्र ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, वो ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है। उसी को बोला जाता है ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव। ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करना नहीं होता है, ज्ञान मात्र जब देखता है तो उसी का मतलब ज्ञेयाकार ज्ञान तिरोभूत हो गया, और उसी को ज्ञान मात्र देखता है तो वो ज्ञान तो ज्ञायक से अनन्य है, तो वो ज्ञान ज्ञायक से अनन्य है, तो उसकी दृष्टि ज्ञायक पर चली जाती है। विधि यही है, इस विधि से ही कार्य होता है, और वहां उसको ज्ञान ही दिखना चाहिए। अभी ज्ञान दिखने लगेगा तो ज्ञेयाकार भी नहीं दिखेगा, ज्ञेय भी नहीं दिखेगा, मात्र ज्ञान दिखेगा, और वो ज्ञान तो ज्ञायक के साथ अनन्य होने से उसकी दृष्टि ज्ञायक पर ही चली जाएगी। ऐसी विधि है। अभी ये विधि के अनुसार खाली ऐसे अंदर ऐसा चित्र नहीं बनता है कुछ, कि ऐसा चित्र बन गया फिर ऐसा विचार करना कि यहाँ ऐसा चित्र बना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि एक ऐसा चित्र बन गया है, अब इस चित्र को मिटाना है, ज्ञान का चित्र खड़ा करना है, ऐसा अंदर में कुछ नहीं होता, अंदर में मात्र जानना ही रहता है, उसका स्वभाव मात्र जानना 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 जानना, ऐसा जाननहार है वो। इस तरीके से उसकी सोच में ऐसी बात लाना है उसको, कोई चीज कहीं से दूर नहीं हो सकती, अपना उपयोग को अपने को समेटना है। जैसे कछुआ होता है ना, वो कैसे अपनी काया को समेट लेता है अपने अंदर में, ऐसे अपने उपयोग को समेटना है सब जगह से, और उपयोग को समेट के उपयोगवान में लगा है ऐसा स्वीकार करना है, ऐसा स्वीकार में अनुभूति हो जाती है, उसका प्रयोग करना पड़ता है, बार बार प्रयोग करना पड़ता है, और वो प्रयोग दैनिक जीवन में चलता है, कोई भी प्रक्रिया के समय ये प्रयोग चल सकता है। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा प्रयोग कर लिया अभी 23.5 घंटा नहीं करना है, उसको प्रयोग नहीं बोला जाता है, प्रयोग तो जीवन है अपना, दैनिक जीवन में प्रयोग चलता है, कोई भी जगह बैठे हैं तो प्रयोग चल सकता है,
ये मेरा ज्ञान जानने में आता है, ये ज्ञेय पृथक है, ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान में जानना है और मैं ज्ञायक हूँ। ऐसा प्रयोग करके 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 उसको ऐसी आदत हो जाती है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मेरे में जानना 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 चल रहा है, ऐसा उसको बार 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 विचार आने लगता है और वो विचार से उसकी कार्य सिद्धि त्वरित नजदीक में आ जाती है। उसको बोला जाता है कि ये ज्ञान से ज्ञायक को ये जीव ने पकड़ लिया, ऐसी बात है।
तो आज ये रीत करी आपने ज्ञान से ज्ञान ने पकड़वानी, तो ये खाली हूँ सुविधा छू चिंतन छू के अंदर
सशक्त है, उसका कारण ये है कि ये प्रगट लक्षण है। प्रगट लक्षण से लक्ष्य जल्दी ख्याल में आता है और विकल्प से ख्याल में नहीं आता है। लक्षण है ना, वो लक्षण मौजूद है और मौजूद है वो ख्याल में भी आता है सबको, वो ख्याल में आता है जरूर, उसको पता नहीं है ख्याल में आ रहा है, मतलब ख्याल में आ ही रहा है, इसलिए उधर से जल्दी पकड़ में आता है और दृष्टि सहज में चली जाती है उधर, उसमें उसको फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, उसकी समझ सही हो जाती है ना, तो दृष्टि को उसका दृष्टा मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। हाँ, ज्ञानी ज्ञानियों जब बोलते हैं ना दृष्टि का विषय की बात, तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि वो इस विधि में से पसार हो चुके होते हैं और अपन को ऐसा लगता है कि ये मात्र दृष्टि के विषय की दृष्टि की ही बात करते हैं, मगर जिसको प्रमाण ज्ञान हो जाता है उसको वो सब बोलने का अधिकार होता है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, मगर वो भी सचमुच में ये विधि में से पसार होते ही उसकी दृष्टि द्रव्य पे लगती है। ये सब चीजें ऐसी है कि पहली बात तो ये है कि जो जो विवेचन करता है उसको आप प्रश्न पूछ लेना, और दूसरी बात ये है कि मध्यस्थता बहुत जरूरी है इसमें, ये मान लीजिए जब तक मध्यस्थता नहीं आती है ज्ञान और श्रद्धा की, तब तक ज्ञान और श्रद्धा की मैत्री होके अनुभूति नहीं होती है, इसलिए ये सही मार्ग है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक जब 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 दृष्टि के विषय की बात की है तब तक साथ में ज्ञान को रखा है, और वो दृष्टि के विषय की बात करते समय भी 17-18 गाथा को कभी नहीं भूलते हैं। तो अपने ज्ञान में निर्णय की जब अपना निर्णय की जब शक्ति चलने लगे, निर्णय करना हो जब, तो दोनों साथ में रखना चाहिए अपने को। दृष्टि का विषय को निकालने की चर्चा नहीं चल रही है, वो तो मूल बात है दृष्टि का विषय, मगर वो ज्ञान के साथ दृष्टि का विषय जुड़ा हुआ है, इसे अलग नहीं है दृष्टि का विषय और ज्ञान का विषय, वो विषय तो एक ही है ज्ञान का और दृष्टि का श्रीकाली द्रव्य, मगर वो साथ में चलना चाहिए। अगर साथ में जब तक नहीं चले तब तक पक्ष बोला जाता है उसको, और ऐसा पक्ष कितने सालों से जीव सब करते हैं, अब क्यों अनुभूति नहीं हो रही है, अनुभूति होनी चाहिए ना, फिर तो अनुभूति नहीं होती है, तो उसमें क्या है कि निर्णय में कुछ कचास है, निर्णय में कचास होने से दृष्टि झुकती नहीं है द्रव्य पर, इसलिए निर्णय की बहुत कीमत है, और निर्णय जब सही होता है तो दृष्टि को उसका द्वार मिल जाता है और दृष्टि उधर चली जाती है।
यहाँ एक प्रश्न है कि
अभी ये जो बात कर रही है ना कि सीधा धरती का विषय ही दृष्टि में लेना चाहिए और ये सब जो है ज्ञान को ज्ञान लक्षण वगैरह बात को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो धरती के विषय में तो ज्ञान लक्षण भी नहीं आता है। तो परिशिष्ट में यही प्रश्न लिखा है, पूछा है आचार्य ब्रह्मा ने, कि लक्ष्मण के द्वारा, क्योंकि लक्ष्मण पति देव उसके द्वारा आत्मा लक्षित होता है, तो उसमें एक प्रश्न और उठाया कि लक्ष्मी प्रसाद ये माने लक्ष्मण क्यों बता रहे हैं, लक्ष्मण की क्यों पहचान करा रहे हैं। तो आचार्य भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि जिसको लक्ष्मण प्रसिद्ध नहीं है उसको लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं होती है। फिर आगे प्रश्न दिया कि ऐसा कौन सा लक्ष्य है कि जो लक्ष्मण से भिन्न पड़े लक्षित होता है, तो उसका ऐसा जवाब दिया है कि लक्ष्मण और लक्ष्य दोनों द्रव्य पड़े अभेद है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि जो लक्ष्मण से भिन्न पड़े लक्षित होता है, लक्ष्मण और लक्ष्य द्रव्य पड़े अभेद है, इस प्रकार से उसका उत्तर दिया।
ये प्रश्न है, ओंकारम इंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, इसका अर्थ समझाने की कृपा करें। देखो ऐसा इसका अर्थ है, पहले तो सीधा अर्थ बता दूं, फिर इसका अर्थ थोड़ा सामान्य से विशेष भी बताएंगे। ओम के शब्द का शाब्दिक अर्थ बता रहा है, इस जो शब्द लिखे हैं ओंकारम इंदु संयुक्तम, ओंकार जो शब्द होता है ना, ओम शब्द होता है, वो ओम में ओ होता है और बिंदी होती है, बिंदी माने समझ में ना, बिंदी जब ओ में रख दो तो ओम बन जाता है, समझ में ना, तो ओ शब्द जो होता है वो जब बिंदी संयुक्त होता है तो ओम बन जाता है, क्या बन जाता है, ओम। और इस ओम को नित्यम ध्यायंती योगी ना, योगी भी इसका ध्यान करते हैं। अब ये प्रश्न का अर्थ खोलना है, क्यों करते हैं ध्यान, ओम शब्द का ध्यान योगी भी क्यों करते, बड़े बड़े योगी इस ओंकार शब्द का ध्यान करते, इसलिए करते हैं कि ओम शब्द में पंच परमेश की गर्भित होते समझाए गए, और पंच परमेश की एक वृद्ध संग्रह ग्रंथ है अपना, उसके अंदर इसका व्याख्या की गई है और एक गाथा भी दी गई कि पड़मक्खण पंडो, पहला अक्षर लेकर के ये निष्पन्न किया जाता है, क्या ओम शब्द, पद मक्खण निपन्न हो और उसमें फिर अरहंता अशरीरा आयरिया तह अध्याया मुनि हो, इनका पहला अक्षर लेकर के और फिर ओम को बनाते, कैसे, अरहंत का आ ले लीजिए और सिद्ध भगवान का दूसरा नाम है अशरीर, क्या नाम है, अशरीर, अशरीरी का आ ले लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो जब छोटा आ मिलता है तो बड़ा आ बन जाता है, ऐसा नहीं, और फिर आके बाद में उपाध्याय का उल्लेजिए, आचार्य का आ लीजिए तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलाने पर भी बड़ा ही आ बनता है, चलिए ऐसा व्याकरण करनी है तो दोनों तीनों मिलने पर एक बड़ा आ तैयार होगा, ठीक है। अब उसमें उपाध्याय का ऊ मिलाइए, आ प्लस ऊ तो ओ बन जाता है, क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। मुनि का माँ हमेशा आधा होता है, क्योंकि जितने व्यंजन होते हैं वे सब आधे होते हैं, जितने स्वर होते हैं वे सब पूरे होते हैं, और कोई भी व्यंजन स्वर मिलाए बिना पूरा होता नहीं, समझाएंगे, तो वो मुनि का कौन सा क्या लेंगे, माँ लेंगे, लेकिन पूरा माँ नहीं बनेगा, व्यंजन आधा ही होता है आधा ही लेंगे, तो आधे व्यंजन में माँ हलंत आ गया ना, अब माँ हलंत को लिखने की विधि दोनों, उस बिंदी लिख दो तो भी माँ का उच्चारण हो जाएगा और अर्थ निकल आएगा, और माँ शब्द भी लिख दो हलंत लगा करके तो भी अर्थ निकल आएगा, तो ओ शब्द में माँ जोड़ो तो क्या बनेगा, ओम, और ये ओम बना कैसे है, पंच परमेश की के पहले पहले अक्षरों से, और पहले अक्षर में पूरा पंच परमेश की गर्भित है, पंच परमेश की माने पहले प्रत्येक अक्षर में वो परमेश की गर्भित है, तो इस ओम शब्द में पांचों परमेश की गर्भित है, और पंच परमेष्ठी का ध्यान योगी करते हैं, योग ध्यान नित्यम ध्यायंती योगी ना, और आगे ये भी लिखा है, ये मैं कैसा है ओम शब्द, काम दम मोक्ष दम, काम माने इच्छाओं का दमन करने वाला है और मोक्ष दम माने मुक्ति का प्रदान करने वाला, मुक्ति को देने वाला, ओंकाराय नमो नमः, ऐसे ओंकार को नमस्कार, बताई नहीं, फिर इसमें बहुत वर्णन किया है इसी ओंकार शब्द का, अविरल शब्द घनऊ, ये शब्द अविरल है माने संकुचित करके एक एक अक्षर में परिणत कर दिया है, एक शब्द में परिणत कर दिया गया पांच शब्दों को मिला करके, इसलिए अविरल माने बहुत घना है, अविरल शब्द घन घनऊ, और एक तो ये अविरल शब्द है और औघ माने होता है समूह, समझ में आएगा नहीं, और घनौघ मन ये शब्द का घन रूप समूह है। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, इसके स्मरण से जगत के जीवों के जितने पाप हैं, कलंक कहो के पाप कहो के रागादि भाव कहो, ये प्रक्षालित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि उपासित तीर्था, और ये मुनियों के द्वारा उपासित है। तीर्था माने पवित्र है, तारने वाला है। मुनि विरूपाशित तीर्था सरस्वती हरत उनो दुर्गम, और यह शब्द सरस्वती का यानी जिनवाणी का वाचक है। वो हमारे पापों को हरण करे, दूर करे। हरत उनो दुर्गम और अज्ञान तिमिरान दाना, जो अज्ञान रूप अंधे हैं, अज्ञान रूपी अज्ञान भाव से अंधे है, ज्ञानांजन सला क्या, ये जिनवाणी ज्ञान रूपी सला का लगा करके चक्षुरुन मीनतम एन, उनके चक्षु धो दिए, जिनके निर्मल कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं। दसवीं श्री गुरु ऐसे गुरुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हमारे अज्ञान के अज्ञान वाले बंद नेत्रों को खोल देते हैं। ज्ञानांजन सला क्या, ज्ञानांजन की सला का लगा करके, सला का लगाते हैं लोग, जो अंजन लगाते हैं ना, सलाई से लगाया जाता है। तो ये ज्ञानों की सलाई से हमारे ज्ञान नेत्रों को खोलते हैं। सही मैं ज्ञानांजन सला क्या चक्षुर्मीतम एक तस्मी श्री गुरु, जिनने ये चक्षु खोल दिए हैं उन गुरु को नमस्कार। ये इसमें ये भाव छिपा है। ये पहले लाइन भी बोले तो इतना भाव गर्भित हो गया उसमें, और पूरी लाइनें बोले तो भी यही भाव गर्भित, और आखिरी में इन्होंने लिखा है स्वानुभूत्या चकासते का अर्थ क्या है। ये आया काय में है, पहला मंगलाचरण है। नमा समय सारा है स्वानुभूत्या चकासते। जब उन्होंने नमस्कार किया कि मैं शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ, तो शिष्य का प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न हुआ कि वो जो आप नमस्कार कर रहे किसको कर रहे हो, हमें तो वो समय सार दिखाई नहीं रहा जिसको आप नमस्कार कर रहे। तो तुम्हें इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो देखा जाता है स्वानुभूत्या चकासते, वो अनुभूति में देखा जाता है, वो कोई और इंद्रिय ज्ञान से बाहर के विकल्प से नहीं देखा जाता। सही में इसलिए हमें तो दिख रहा है क्योंकि हम निर्विकल्प अनुभूति के द्वारा उसको अपने ज्ञान में प्रकाशित देख रहे हैं। किसको, शुद्धात्मा को। नमा समय सारा है, और वो कहाँ प्रकाशित होता है, कहाँ दिखता है, स्वानुभूत्या चकासते, अनुभव में दिखता है। आत्मानुभूति में वो आत्मा दिखाई देता है, दिखाई देता है अनुभव में आता है। ऐसा नहीं दिखता कि जैसे केवल ज्ञानी को प्रदेश वाला दिखता है, ऐसा नहीं दिखता, लेकिन उसका स्वाद दिखता है, स्वाद अनुभव में आता है। इसलिए स्वानुभूत्या चकासते, और जब अनुभव में आता है तो कैसा आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द डाला है। एक तो अनुभव में भाव रूप आता है, भाव माने सत्तावान माने द्रव रूप में अनुभव में आता है। मैं अभी कभी प्रश्न किया था भाई जी ने, अभी लिया था भाई जी ने, कि देखो मैं जब निर्णय करूं कि मैं हूं, ये निर्णय करूं कि मैं, ये निर्णय करूं कि मैं चैतन्यमय, तो इस श्लोक में ये निर्णय किया कि पहले मैं हूं निर्णय करो। जो मैं की सत्ता नहीं जानता है वो मेरा स्वभाव क्या है, ये सत्ता कौन सी नहीं जानी। तो भावा शब्द मैं की सत्ता को बताने वाला, द्रव्य को बताने वाला है, और चित्त स्वभाव है, ज्ञान गुण के द्वारा चैतन्यमय अपने को बताया गया है, इसलिए गुण की सत्ता बता रहा है। और प्रमुख गुण होता है, अनंत गुणों में प्रमुख होता है ज्ञान, सही में आएगा, वो चैतन्यमय होता है। स्व को भी चेतता है और पर को भी चेतता है। तो कहे ये चेतता है तो गुण हो गया, और मेरी सत्ता है और मैं चैतन्यमय हूँ, अब मेरी उन पर्याय जो पैदा होती है उसमें क्या ताकत है। तो कहे स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे, पर्याय की सामर्थ्य मेरी ऐसी है ज्ञान पर्याय की कि जिसमें जगत के जितने भाव है अनंत अनंत भाव वे सब उसमें प्रतिबिंबित होते, अंतर छिदे मान उसमें प्रतिबिंबित होते, ऐसा लगता है कि अंतर घुस गए हों उसमें। चाहे नहीं अभी चर्चा चल रही थी ना कि वो जो गेय ज्ञान में आता है कि नहीं आता है, आपने अपना रोज दर्पण में चेहरा देखा है कि नहीं देखा है, बोलो जी, बोल नहीं सकती देखा है कि नहीं देखा, ऐसे हिलाने में हम अर्थ नहीं निकाल पाते क्या, अब ये बोलो देखा है बोलो कोई बात नहीं, आपकी तरफ से मैं बोल देता
हूँ। बोलते देखा है,
है? देखा है क्या देखा है? चेहरा देखा,
दर्पण देखा, दर्पण देखा है,
दर्पण देखा है।
हम नहीं है लेकिन दर्पण।
सुनो तो चेहरे में दिखा कौन? वो उसमें माने दर्पण में दिखा कौन, झलका कौन?
झलका है।
कौन झलका?
झलका और झलका है वो मैं।
आप ये बोलो ना, झलका कौन है?
झलका है बात अपनी, लेकिन है दर्पण।
नहीं, ये आप उल्टा बोल रहे हैं। हम जो पूछना चाह रहे हैं वो ये कि जब आप दर्पण देखते हो तो क्या दिखता है? ईमानदारी से बोलो ना, चेहरा दिखता है। और प्रतीति तुम्हारी क्या वर्तती है कि दर्पण में चेहरा है कि चेहरे में चेहरा है? और देखते कहाँ हो? और है कहाँ? चेहरे में। ये कहाँ दिखता है? ज्ञान की पर्याय में। कहाँ दिखता है? ज्ञान की पर्याय में। और होता कहाँ है? जहाँ गेय की सत्ता है वहाँ होता है। समझाया? अब दूसरी बात, वो जो गेयाकार परिणाम होता है, ये आत्मा का परिणम परिणाम तत्व शक्ति का ऐसा स्वभाव है, तो वो स्वयं पर्याय रूप में परिणमन कराने की भी सामर्थ्य उसमें है और उसकी परिणमने की भी सामर्थ्य उसमें है। चलना है कि नहीं? तो जो परिणम परिणाम तत्व शक्ति है उससे वे पर्याय होती है, और वे पर्याय फिर नए का विषय है, और वे ज्ञान की सब पर्याय है। किसकी पर्याय है? जितनी भी गेय आकार दिखती है किसी में गेय नहीं है, मगर सब दो काम करती है मालूम। एक काम तो ये करती है कि वे स्वयं परिणमन करती है, दूसरा काम ये करती है कि उनमें जो झलकता है उसकी सत्ता को प्रमाणित भी करती है। जगत में जो झलकने वाले पदार्थ में जगत में है कि नहीं, बोलो जरा, किसने प्रमाणित किया? वो ज्ञान की तरंगों ने प्रमाणित किया। ये आकाश जैसी जो दिखती ना, उनने ये प्रमाणित कर दिया कि जगत में ऐसे पदार्थों की सत्ता है। लेकिन उनकी सत्ता कोई मेरे प्रकाशित करने से नहीं है, उनकी सत्ता स्वतंत्र है और मेरा परिणमन स्वतंत्र है। अब आगे चलिए, स्वभाव पे चलना है। तो अब ये बताइए कि उन ज्ञान तरंगों में गेय समाया है कि उन ज्ञान तरंगों में ज्ञान समाया है? ज्ञान समाया है। तो वो ज्ञान अनेकाकार ज्ञान है कि एकाकार ज्ञान है? हो गया तुम
है?
हाँ, हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। आपके भाव में केवल ज्ञानी नहीं समा सकते, केवल ज्ञानी भी बता सकते हैं। समाने की ताकत प्रत्येक आत्मा की निजी है। अब जो समा सके तो समा लेंगे, ना समा सके तो ना समाए। हमारी वो जिम्मेदारी नहीं, किसी की भी जिम्मेदारी नहीं, वो जिम्मेदारी अपनी से।
શ્રીમદ રાજચંદ્રે જીવની પાત્રતા ઉપર બહુ ભાર આપ્યો છે અને ત્યાગ વૈરાગ ઉત્તમ અને ભક્તિ એના સાધન કહ્યા છે। ભેદ જ્ઞાન કરવાની પૂર્વ ભૂમિકા રૂપ પાત્રતા કેટલી જરૂરી છે? શ્રીમદ રાજચંદ્રજીને બોલા હૈ ત્યાગ વૈરાગ એને ચિત્તમાં થાય અને તેને જ્ઞાન ઓર દૂસરી લીટી મેં એસા બોલા હૈ અટકે ત્યાગ વૈરાગમાં તો ભૂલે ની એટલે ત્યાગ વૈરાગ હોવા જોઈએ કે ન હોવા જોઈએ એ પોતાએ વિચારવાનું છે કે પોતે અશુભમાં કેટલો હોય છે, શુભમાં કેટલો હોય છે અને શુભમાં જવા માટેની પૂર્વ ભૂમિકા શું હોય છે એ પોતાની પાત્રતા પોતે નક્કી કરવાની હોય છે। હા, કારણ કે એ પાત્રતા કોઈ કરાવી શકતું નથી અને શુભ ભાવ ક્યારેય કરવાથી થતા નથી, એ સ્વયં આવતો ભાવ છે અને જ્ઞાન તો એને જાણતો ભાવ। પણ કોઈ ચારિત્રની દશામાં એવી વિપરીતતા ચાલ્યા કરતી હોય કે અશુભની પ્રવૃત્તિમાં જે રાજકો રહેતો હોય અને જ્ઞાનની વાત કરતો હોય તો એવું જ્ઞાન એને સફળતાપૂર્વક અંદર જવામાં મદદરૂપ થતું નથી। એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ વારંવાર આ વાત એના પત્રોમાં અને ઘણી જગ્યાએ કરેલી છે, પણ એ સાથે સાથે વાત કરતા કરતા પાછી બીજી વાત મૂકતા જાય છે કે અટકે ત્યાગ વૈરાગમાં તો ભૂલે ની વાત, એટલે એ બે વાત આમાં શ્રીમદ રાજચંદ્રજી કરતા હોય છે। રોજિંદા સંસારી જીવનમાં વેદનાની પ્રક્રિયા સતત કેવી રીતે કરવી તે સમજાવવા વિનંતી છે। હમણાં આપણે વિષય જ્ઞાનનો, જ્ઞાનની સ્વચ્છતા, જ્ઞેયોની પ્રતિભાસનતા, જ્ઞાનનું જાણવું અને જ્ઞાયક ભાવ એવી રીતે આવી છે।
जैसे अभी हम अपने को कृषि और ज्ञान जैसा है उसका मध्यस्थ न करके दोनों की संधि पूर्व अपना अभ्यास करना चाहिए। इसी बात चलती है जैसे निश्चय और व्यवहार इससे भी जैसे आत्मा कल्पना अपना कर रहे हैं उसके निश्चय की जैसी जैसी स्थिति है उसको भी जानना चाहिए और उसके साथ में बढ़ने वाला जो भी व्यवहार है वो भी उसके साथ के अनुकूल ही होना चाहिए।
ज्ञान अनेकांतमय ही होता है इसलिए अनेकांत का ज्ञान वस्तु स्वरूप का पूरा ही होना चाहिए फिर प्रयोजन की सिद्धि होती है।
सत्यानुनिष्ठे का होता है वो साथ में अभी तक पूर्ण बना नहीं हो जाता है तब तक उसका परिणाम जो है वो व्यवहार में ही प्रकाश पर अपने